Krishna bhakti rasa bhavitamati kriyatam yadi katopi labhyate tatra lolyam apimulyam ekalam janma koti sukritaya na labhyate. Krishna bhakti ras. Krishna bhakti ras prapt karna samast adhyatmik margon ki param siddhi nahito karam nahito gyan nahito yog. Krishna bhakti sab jeev ka mool dharm aur Krishna prem prapti sab jeev ki param siddhi hai. To bhakti kya hai? Jisme ras hai, is bhautik sthiti mein bhi ras hai, lekin ras jo hai is bhautik sthiti mein wo jara ras bolte hai, vikrit. Vastavik ras, prem ras, golok ras, Krishna bhakti ras, wo premanand paramanand ka aadhar hai. Aur is bhautik sthiti mein sab ras jo hai, jo bhautik sambandh se aate hai, wo vastavik ras nahi, ras hai lekin uski parinati hote duk. Ras se hamari aasha hai ki hum param sukh milenge. Bhakton vrajvasiyon Krishna ko prem karte hai aur us prem mein chira sukh hote hai. Aur vrajvasiyon ka ras itna ghana hai kyunki vrajvasiyon ki koi aasha nahi hai Bhagwan se. Jyada log Bhagwan ki puja karte hai ya bhakti karte hai, kisse kuch aasha aakanksha hai ki hey Bhagwan aap mahan ho, sab cheezon ke malik to mujhko kuch cheez do. Yehi bhakti nahi hai. Moksh prarthana wo bhi bhakti nahi hai. Bhakti ki paribhasha Chaitanya Mahaprabhu humko diya hai. Na dhanam na janam na sundarim kavitam va jagadisha kamaya mama janmani janmanishvare bhavatad bhakti rahituki chai. He Jagadish Govinda, aap pura jagat ke malik hai. Aur aapse sab vastu prapt hote hain jisse bhautik bhog vilas ho sakte hain, lekin aise koi cheez main nahi chahta hoon. Nahi dhan, nahi jan, nahi sundari stri. Aur pura jagat mein jo aapka jagat hai, Jagadish, Jagannath, pura jagat mein sab kuch jo hai bhautik bhog vilas indriya sukh ke liye, usme meri koi ichcha nahi hai. Aur Chaitanya Mahaprabhu aur bhi bole, mama janmani janmani, matlab har janam mein मैं केवल आपकी अहितु की भक्ति चाहिए. अहितु की भक्ति जन्मनि जन्म जन्मनि अर्थात चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना मोक्ष के लिए भी नहीं है. तो मैं प्रस्तुत हूं असंख्य जन्म लाना, यदि उसमें अवसर हो आपकी सेवा करना. ये अहितु की सेवा बोलते हैं. अहितु की मतलब उसमें भौतिक स्वार्थ के लिए कोई इच्छा नहीं है। तो इस प्रकार की भक्ति निस्वार्थ भक्ति से भक्ति रास की उत्पत्ति होती है। तो वास्तविक भक्ति उस प्रकार है जिसमें कोई भौतिक स्वार्थ की आकांक्षा नहीं रहते हैं, और इस प्रकार की भक्ति से वास्तविक प्रेम रस जो शुद्ध भक्तों सदैव आस्वादन कहते हैं वो प्रेम रस उपलब्ध होते हैं। तो जब तक हम अन्य प्रकार की इच्छा रखते हैं तब तक प्रेम रस आस्वादन का कोई प्रश्न नहीं होते। भुक्ति मुक्ति स्प्रिहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तस्य भक्ति रसाम्बोधे तथा कथम उद्बोधये भवेत। अर्थात जब तक ये दो पिशाची भुक्ति और मुक्ति स्प्रिह, भुक्ति मतलब भौतिक भोग विलास इंद्रिय सुख, और मुक्ति मुक्ति के लिए इच्छा, वो भी भक्ति के विरुद्ध है। मुक्ति और भक्ति एक पर्याय नहीं है। मुक्ति वांछा वो भक्ति के विरुद्ध है, क्योंकि भक्ति का मतलब पूरा आत्मसमर्पण करना। तो मोक्ष वांछा वो भी भक्ति का बाहर है। तो उस प्रकार की मोक्ष जिसमें ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, तो वो इच्छा ऐसी मोक्ष प्राप्त करना, वो बिल्कुल भक्ति के विरुद्ध, क्योंकि लीन अवस्था में सेवा करना का कोई अवसर नहीं होते। इसलिए शुद्ध भक्तजन का विचार में इस भौतिक जगत में रहना अच्छा है लीन होने से, क्योंकि भौतिक जगत में अवसर हो भगवान की सेवा करने, कृष्ण सेवा करने, और लीन अवस्था में कोई अवसर नहीं है। तो भक्ति रस, वो भक्ति रस कोई साधारण भावना नहीं है। वो भक्ति रस केवल शुद्ध भक्त मिलते हैं, जिनके हृदय में ये दो पिशाची रहते हैं, भुक्ति स्प्रिह मुक्ति स्प्रिह। तो भक्ति रस नहीं आते हैं उस प्रकार का हृदय में। शुद्ध हृदय में भक्ति रस का उदय होते हैं। शुद्ध का मतलब अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्ति उत्तम। अन्य अभिलाष शून्य, तो सभी प्रकार की इच्छा जब हटाना है हृदय से, तब शुद्ध भक्ति हृदय में प्रकाशित होते हैं। तारवत भक्ति सुख यात्रा कथम अभ्युद योग वेद। जब तक हृदय में भुक्ति और मुक्ति स्पृह रहते हैं तब तक कोई प्रश्न नहीं है। शुद्ध भक्ति की अवस्थिति तो कृष्ण भक्ति रस उसको अनुभव करना संभव है शुद्ध भक्ति में, शुद्ध मति में। और इस श्लोक में कृष्ण भक्ति रस भावित मति ही रूप गोस्वामी कृत एक श्लोक है। तो इस श्लोक में रूप गोस्वामी कहते हैं कि एक उदाहरण देते हैं कि वो भक्ति रस प्राप्त करना चाहिए। अगर किसी में किसी जगह में उपलब्ध है तो भक्ति वो भक्ति रस तो जैसे तैसे हो लाना चाहिए। जो भी मूल्य है वो मूल्य देना चाहिए। ये भक्ति रस सबसे कीमती चीज है। कीमती मतलब साधारण पैसा से भक्ति रस खरीदना और बिकना भी नहीं है। भक्ति रस का दाम कितना? एक रुपया, सौ रुपया, लाख रुपया, करोड़ रुपया, हजार करोड़ रुपया। हजार करोड़ रुपये से भी भक्ति रस नहीं मिलते। तो उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी कि अगर बाजार में वो भक्ति रस उपलब्ध है तो उचित दाम देने चाहिए खरीदने के लिए। वो उचित दाम क्या है? हजार करोड़ भी वो काफी नहीं है भक्ति रस खरीदने के लिए। तो क्या दाम है? ये भक्ति भावना का क्या भाव है? भाव है लोल्य अर्थात दृढ़ आकांक्षा। तो अगर दृढ़ आकांक्षा हो कि मैं कृष्ण सेवा करूंगा, मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, तो ऐसा उद्देश्य अगर हो तो वो कृष्ण भक्ति रस जो करोड़ रुपये में भी उपलब्ध नहीं है तो भगवान की कृपा से आसानी से मिलता है। तो हमारी आकांक्षा होना चाहिए भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो सब कुछ इच्छा के ऊपर निर्भर करते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यंग यंग वापि स्वरम भावम त्यजन्ते कलेवरम थम थमे वैते कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। मृत्यु का समय उस समय में हमारी भावना के अनुसार हम अगली अवस्था मिलती है। तो मानव जाति के अलावा कुत्ते भी है, ऊंट भी है, बिल्ली भी है, कीट पतंग पक्षी वृक्ष 84 लाख प्रकार की जीव जाती है। तो जीव सब प्राणी के अंदर में जीव है। तो जीव जिसकी अवस्था है सच्चे आनंदमय, तो कैसे कुत्त सूर्य धारण करते, कैसे बिल्ली सूर्य धारण करते? तो इच्छा के अनुसार जो कुत्त का सूर्य धारण करते हैं, तो पहले मनुष्य और मानव शरीर में ऐसी इच्छा अनुशीलन किया जिससे अभी कुत्त का शरीर धारण करते हैं। तो मति अगर कुत्त की जैसी तो कुत्त का शरीर प्राप्त होते हैं। तो सब कुछ इच्छा के ऊपर निर्भर करते हैं। तो हमारी इच्छा शुद्ध होना चाहिए। क्या इच्छा है हमारी, क्या इच्छा है? इच्छा होना चाहिए परम लाभ प्राप्त करने के लिए। क्या है, बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे समय नहीं है भक्ति के लिए, समय है टीवी देखने के लिए, समय है न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, लेकिन समय नहीं है भक्ति के लिए। वास्तव में सबके पास समय है लेकिन इच्छा जुड़ा नहीं है। तो शुद्ध भक्ति प्राप्त करना का एक उपाय है तत्र लोल्यम अपि मूल्यम एकलम। खाली एक मूल्य से शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, वो मूल्य है लोल्यम, लोभ। क्या लोभ? गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस् तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक जनक के तीन रास्ते हैं, काम क्रोध और लोभ, और इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य ये तीनों को त्याग करना है। काम क्रोध और लोभ चढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। लेकिन दूसरे प्रकार का लोभ है जिससे परम लाभ मिल जाते। साधारण लोभ क्या है? लोभ पैसा के लिए, धन के लिए, वही लोभ है। और दूसरे प्रकार का लोभ है शुद्ध लोभ। वो लोभ, उसका मतलब बहुत बड़ी आकांक्षा कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो लोभी लोग क्या करते हैं, दिन रात काम करते हैं ज्यादा पैसा कमाने के लिए, लोभ से इतना मेहनत करते हैं। तो दूसरे प्रकार का लोभ है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। और जो उस प्रकार लोभी है तो सदैव तत्पर है कृष्ण भक्ति में। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अनन्य चेत सततम। वृंदावती प्रभु, आपका अनुरोध था इस श्लोक के बारे में कुछ चर्चा करना, अभी चर्चा करता हूं। अनन्य चेत सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण भक्ति रस प्राप्त करने के लिए एक मूल्य है, वो मूल्य है लोल्यम, दृढ़ आकांक्षा। और गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सुलभ हूं, आसानी से कम दाम में मुझको प्राप्त होते हैं। तो सबके लिए नहीं, भगवान और भगवान की भक्ति सबके लिए उपलब्ध नहीं है। किन के लिए उपलब्ध है? अनन्य चेत सततम योमं स्मृति नित्यशः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं सततम सदैव और नित्यशः, ये दो शब्द का एक ही अर्थ है, तो जोर देने के लिए। भगवान कृष्ण दो बार कहते हैं कि वो भक्तजन जो सदैव मुझको आकांक्षा करते हैं और सभी प्रकार का अन्य चिंतन त्याग करते हैं, और ऐसे भक्त का जीवन का एक ही उद्देश्य होते हैं कृष्ण चरण प्राप्ति, तो उस प्रकार का भक्त के लिए मैं सुलभ हूं श्री कृष्ण कहते हैं। और फिर क्या बोलते हैं कृष्ण, नित्य योग से योग रहा। तो तीन बार एक श्लोक में श्री कृष्ण कहते तस्या हम सुलभ पाता नित्य योग से योग न, तो सततम नित्यशः नित्य युक्त। तो इस प्रकार का श्लोक है भगवत की, कही श्लोक है गीता में, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां योम है। ओ अभी तो कंफ्यूज हो गया। हाँ, ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता हम योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो अनन्यश्चिन्तयन्तो मां, मतलब अन्य मनस्क मन विचलित नहीं होना चाहिए, मन स्थिर भाव से भगवान के श्री चरण में रखना चाहिए। ये जना पर्युपास तेषां नित्याभियुक्तानं, सदैव मेरी सेवा में युक्त है। और गीता में श्री कृष्ण और क्या कहते हैं कि बहुशाखा ही अनंत शाह, जो जिनकी बुद्धि बहुशाखा व्यवसायात्मिका बुद्धि होनी चाहिए, तो मन एकाग्र होने चाहिए कृष्ण सेवा में। तो इस प्रकार की भक्ति से भगवान को आसानी से मिल जाते हैं। तो इस एकाग्रता कैसे मिलती है? तो भक्ति में उपाय और उपेय, साधना और साध्य एक ही है। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। भक्ति भक्तों की संगति से मिलती है, और भक्तों इनकी दया से हमको भक्ति रस दिखाते हैं। भक्त्या संजते या भक्त्या, हमको सिखाते हैं कैसे भक्ति करना है। तो भक्ति करने से क्या होते है? भक्ति पहले भक्ति करना है, वैधि भक्ति साधना भक्ति, वो अभ्यास जैसे। तो साधना अवस्था में भक्ति जो करना है वो जब सिद्ध हो तो एक ही भक्ति करना है, लेकिन सिद्ध अवस्था में पूरा भक्ति रास प्राप्त होते हैं। तो साधना और सिद्धि में भक्ति तो एक ही है, साधना में साधना अवस्था में तो भक्ति जो करना है तो उस समय मन विचलित रहते हैं, लेकिन सिद्ध अवस्था में सदैव कृष्ण स्मरण आते हैं। तो इस भौतिक जगत में लोग जो कृष्ण भक्ति रस प्रार्थी है, साधु गुरु साधु और शास्त्र के उपदेश के अनुसार भक्ति करते हैं, और वो भक्ति जो हम करते हैं यहां पर वो ही अभ्यास वहां पर भगवान की नित्य लीला में सेवा करने के लिए। तो यहां पर हम कृष्ण नाम बोलते हैं और सिद्ध अवस्था में भी कृष्ण नाम गाना है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम हरि कीर्तन करते हैं और बाद में हरि कीर्तन का फल से हम भगवान की ज्योति में लीन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कीर्तन है नित्य सेवा, मुक्त अवस्था में भी कीर्तन करना है। कीर्तन मुक्त पुरुषों का नित्य धर्म है, कीर्तन तो खाली उपाय नहीं है, उपरम धर्म है। और मुक्त अवस्था में मुख्य सेवा है शुद्ध भक्तों की कीर्तन करना। तो श्रवण कीर्तन स्मरण इस भौतिक अवस्था में हम साधना करते अभ्यास जैसे, और इस अभ्यास करने से जब हम सिद्ध होते हैं तो वो भक्ति हृदय में आपने आप से आएगा। अभी हम विधि के अनुसार करते हैं तो गुरु से आदेश मिलते, माला करो, हरि नाम करो, ये सब नियम पालन करो, मंदिर जाओ, आरती करो इत्यादि। और मुक्त अवस्था में वो सब भी करना है, आरती करना, सेवा करना, भगवान को भोग लगाना, ये सब करना है। इस अवस्था में हम भक्ति रस प्राप्त करने के इच्छुक का स्तर में से करते हैं, और मुक्त अवस्था में हम अपनी इच्छा से प्रेम से करते हैं। तो भक्ति से और भक्ति होती है, भक्ति करने से भक्ति बढ़ते हैं। और भक्ति का सारांश क्या है? भक्ति नवदा है, भक्ति के असंख्य अंग है, लेकिन नौ मुख्य अंग है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये नवधा भक्ति। तो कैसे भक्ति करना है? तो भगवान के बारे में श्रवण करना, भगवान का कीर्तन करना, इनका नाम कीर्तन, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, रूप कीर्तन, नाम गुण रूप लीला। नाम कीर्तन मतलब भगवान का नाम गाना, हरि कृष्ण गोविंद गोपीनाथ गोपाल मुरारी वंशीधारी नारायण, ये सब नाम उच्चारण करना। फिर गुण कीर्तन, इनके गुण गान करना। रूप कीर्तन, इनका रूप वर्णन करना। और लीला कीर्तन, इनकी लीला का वर्णन करना। तो ऐसे कीर्तन करना है, श्रवण करना है, स्मरण करना है, अर्चन करना है। तो यही भक्ति के अंग है और असंख्य अंग है, नौ मुख्य विभाग है भक्ति में। लेकिन ये सब क्रिया जो है भक्ति में, सारांग उस उनमें क्या सारांश है? सारांश है सेवा करना। सेवा किस लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो इसलिए और ऐसे समझना चाहिए कि वास्तविक भक्ति क्या है और अवास्तविक भक्ति क्या है, या अभक्ति, भक्ति का नाम है अभक्ति क्या है। तो इसके बारे में रूप गोस्वामी इस श्लोक में भी कुछ इंगित देते हैं। जन्म कोटि सुकृत्याय न लभ्यते। जड़ आकांक्षा अगर हो भक्ति रस प्राप्त करने के लिए, तो उसी मूल्य देने से, सुलभ से भगवान को प्राप्त होते हैं। लेकिन जन्म कोटि सुकृत्याय न लभ्यते। अन्य प्रकार से सुकृति से भी भगवत भक्ति प्राप्त नहीं होती। सुकृति का मतलब पुण्य कर्म। पुण्य कर्म क्या है? तो ऐसे बहुत प्रकार है। कंगालों को दान देना, कंबल, खन्ना, कुआ तालाब निकालना। आधुनिक युग में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हॉस्पिटल, स्कूल बनाना वो ही पुण्य कर्म है, लेकिन वो शास्त्र में ऐसा नहीं। विद्यादान वो ही पुण्य कर्म, मतलब वेद सिखाने का बंदोबस्त करना। लेकिन ये सब भौतिक विद्या, कैसे इंजीनियर बनाना है, स्कूल जाने से कैसे नास्तिक बनाना है, तो ऐसे स्कूल बनाना वो पुण्य नहीं है, पुण्य का वो पाप है। ऐसे स्कूल में नास्तिक धर्म और नास्तिक अधर्म सिखाते हैं कि कोई भगवान नहीं है, तो खाली घटना से, विश्व से, विश्व की सृष्टि हुई और कोई भगवान नहीं है। और मानुष बंदर से आते हैं, तो ऐसी शिक्षा देना मानुष का सत्यानाश का कारण है। तो ऐसे स्कूल बनाने से पुण्य नहीं होते। ये गलतफहमी है कि पुण्य ही भक्ति है, लेकिन भौतिक पुण्य और पूर्ण शुद्ध निर्मल कृष्ण प्रेम भक्ति बिल्कुल अलग है। पुण्य कर्म करने है किस लिए? जिससे स्वाग प्राप्ति होती है। और शुद्ध भक्ति करने है किस लिए? जिससे हम स्वाग नहीं जाएंगे, जिससे हम सदैव अवसर में रहेंगे कृष्ण सेवा करना। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो साधारण पुण्य कर्म असमर्थ हमको कृष्ण भक्ति देना, क्योंकि भौतिक पुण्य और शुद्ध कृष्ण भक्ति बिल्कुल अलग है, दोनों की गुण अलग है। पुण्य कर्म वो भौतिक प्रयास है जिससे भौतिक सुख मिलते हैं, लेकिन वो भौतिक सुख भक्ति में बाधा है, भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, बाधा है। तो ये सब समझना चाहिए। अगर हम अच्छी तरह समझते भक्ति क्या है, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, और भगवान और मैं, हम दोनों में हमारा क्या संबंध है, अगर हम अच्छी तरह समझते हैं तो हमारा भक्ति रास्ता बहुत सीधा हो। तो अगर हम अच्छी तरह नहीं समझते तो शुरू से बहुत अंतराय होगा और हम गलत रास्ते में जाएंगे। और अगर वो भक्ति के बारे में स्पष्ट धारणा नहीं होती है तो श्रवण कीर्तन अर्चन इत्यादि करके भी जितने भी करना है तो शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो पहले से समझना चाहिए गीता का वास्तविक अर्थ क्या है। अवजानांति मां मूढ़ा मानुषिंथनमाश्रितम परम भाव मजानंतो, मानुषिंथन परम भाव मजानंतो, परम भाव मजान मूर्ख लोग, श्री कृष्ण कहते हैं कि मूर्ख लोग नहीं जानते हैं ममाव्ययम अनुत्तमम, मूर्ख लोग नहीं जानते श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता। मूर्ख लोग सोचते हैं कि कृष्ण हमारे बीच में आते हैं इसलिए कृष्ण हम जैसे साधारण व्यक्ति है, अथवा सोचते हैं कि कृष्ण सत्वगुण का विकार है या कृष्ण अव्यक्त से आया है। अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्यन्ते माम बुद्धयः, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बोलते कि श्री कृष्ण अव्यक्त से आया है वो ऐसे व्यक्ति मूर्ख है। तो ये सब वचन है कृष्ण की भगवद गीता में, लेकिन कैसे विचित्र है कि बहुत सारे लोग जो गीता पढ़ते हैं और भक्ति भी करते हैं लेकिन ये बात नहीं समझते, और भक्ति करते कीर्तन अर्चन ये सब करते हैं लेकिन सोचते कि भगवान कृष्ण सत्वगुण का विकार है। तो गीता में स्पष्ट है कि श्री कृष्ण तीन गुणों के अतीत है, चिभिर गुणमाया भाव, लेकिन माया का आवरण से, माया का आवरण से आवरित होकर लोग जिनके हृदय में दृढ़ आकांक्षा नहीं होते हैं शुद्ध भक्ति करना, तो एक प्रकार की भक्ति करते हैं लेकिन उस प्रकार की भक्ति क्रौ क्रौ जन्मों में भी हमको वास्तविक भक्ति का फल नहीं देगी। तो भक्ति आरंभ से शुद्ध होना चाहिए, और अगर हम शुरू में शुद्ध भक्ति का अर्थ समझ सकते हैं तो हम तुरंत ही भक्ति रस, कृष्ण प्रेम रस प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कृष्ण प्रेम रस, कृष्ण भक्ति का सार अंश है सेवा करना, शरणागत भाव से, शरणागति। शरणागति का मतलब आत्मसमर्पण। तो ये शरणागति के छह मुख्य लक्षण है। अनुकूल यस्य संकल्प, प्रतिकूल यस्य वर्जनम, प्रक्षिष्यति विश्वास गुप्त वैवरणम तथा आत्मा निक्षेप कार्पण्य सर्वविधा शरणागति। शरणागत भक्त, आत्मसमर्पित भक्त सब कुछ कहते हैं जो भक्ति में प्रगति करने के लिए अनुकूल है और जो प्रतिकूल भक्ति के लिए नहीं करते। तो इसलिए हम इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हम जल जैसी दीक्षा नहीं देते। आओ आओ सब आओ दीक्षा लो, हम ऐसे घोषणा नहीं करते। तो कुछ शर्त है। तो दीक्षा का कोई मतलब नहीं है। अगर गुरु नहीं सिखाते तो क्या अनुकूल है भक्ति के लिए, क्या प्रतिकूल है, कुछ नियम पालन करना चाहिए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अनुकूल जो है भक्ति के लिए वो करो। अनुकूल क्या है? मुख्य है कृष्ण नाम उच्चारण करना। और प्रतिकूल क्या है? पाप कर्म। असम प्रसिद्ध है चाय के लिए, लेकिन चाय भिन्न भी वो भी एक प्रकार का पाप है। असम का मुख्य एक्सपोर्ट है पाप। इतना बड़ा पाप नहीं है मांस खाना जैसे, फिर भी पाप है। जब ब्रिटिश सर्वप्रथम चाय को दिए थे भारत में, तो ज्यादा लोग पीने वाले नहीं थे। भारतीय लोग ने सोचे नहीं हम कैसे लेंगे, एक प्रकार का नशा है पाप। गीता में श्री कृष्ण कहते पत्रं पुष्पं फलं फूल फल जल पत्र मुझको अर्पण करो। तो पत्र का मतलब तुलसी पत्र, चाय पत्र नहीं है। भगवान को चाय अर्पण करना नहीं चलेगा। चाय प्रसाद ऐसे कोई चीज नहीं है। तो सब कुछ जो अनुकूल भक्ति के लिए करना चाहिए और सब कुछ जो भक्ति में प्रतिकूल, वो बाद में चला सकते हैं, अभी चलाने का क्या जरूरत है। वो श्रवण करने के लिए प्रतिकूल है, वर्जन करना चाहिए, बंद करना चाहिए। तो रक्षिष्य तीति विश्वास हो, विश्वास होना चाहिए कि कृष्णा मुझको रक्षा करेंगे। गुप्तृद्वै वरणं तथा, और दूसरे देव देवियों के पास जाने का कोई जरूरत नहीं है। कृष्णा हमको पालन करेंगे, यही विश्वास है। अन्य देवाश्राय नहीं तो हमारे कहे नो भाई, ए भक्ति परमा करण। अगर देव देवियों के पास जाना है तो भक्ति शुद्ध नहीं हो सकती, एकाग्र नहीं हो सकता। एक निष्ठ भक्ति होना चाहिए। एक निष्ठ का मतलब सर्वधमन परित्यज माम एकम शरणम व्रज, केवल कृष्ण के चरण में शरण लेना चाहिए। और आत्मनिक्षेप, मन तन धन सभी चिंतन से, सभी वचन से, सब कुछ केवल कृष्ण की सेवा में अर्पण करना चाहिए। हर श्वास कृष्ण सेवा में अर्पण करना चाहिए। सब कुछ जो हम करते हैं, बोलते सोचते, तो केवल श्री कृष्ण की सेवा के लिए होना चाहिए। और कार्पण्य नम्रता, तो भक्ति और अहंकार एक साथ नहीं चलते, नम्र स्वभाव होना चाहिए। तो ये भक्ति के से मुख्य लक्षण है। इस विश्वास है कि यदि मैं प्रयास करूंगा आचार्य का आदेश के अनुसार सेवा करना, तो अवश्य ही कृष्ण मुझको रक्षा करेंगे। आज सुबह कुछ चर्चा थी भजन जीवन और प्रचार जीवन के बारे में। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरा गुरुदेव धोखा देने वाले है और मुझको प्रचार सेवा किया है, और वास्तविक भक्ति है केवल भजन करना, तो नहीं है। अगर हम गुरु का आदेश के अनुसार जीवन समर्पण करते हैं प्रचार के लिए, तो अवश्य ही हम सब भक्ति रस मिलेंगे इनकी कृपा से, वो ही विश्वास होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद बोले कि इस जीवन उत्साह करो कृष्ण सेवा में, तुम वंचित नहीं होगा। तो कितने सारे जीवन हम व्यतीत किया भोग विलास का प्रयास में, तो इस जीवन कृष्ण सेवा में उत्सर्ग करना चाहिए। विशेषकर जिनके अवसर है कृष्ण भक्ति प्रचार करने, तो वे बहुत ही भाग्यवान है। ब्रज गोपियां क्या बोलती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि ईडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणंती ये भुरीदा जना। ब्रज गोपियां कहते हैं, ये गोपी गीत का एक प्रसिद्ध श्लोक है कि तव अर्थात कृष्ण तुम्हारा, तव कथामृतम कृष्ण कथा अमृत का समान है, तप्त जीवित व्यक्ति के लिए अमृत है। तप्त जी मतलब हम सब इस भौतिक दावाग्नि में हम सब जलते हैं, और इस कृष्ण कथा अमृत जैसे है। तो इस कृष्ण कथा सुनने से हम भौतिक यंत्रणा से आराम मिलते हैं, और ये कृष्ण कथा महान महान शास्त्रविद पंडितों अनुमोदित है। कृष्ण कथा श्रवण करने से अमंगल जीवन मंगल होते हैं, और कृष्ण कथा में पूरी शक्ति है लोगों का जीवन परिणत करने के लिए। और गोपियां का विचार है मीमांस कि जो व्यक्ति कृष्ण कथा परिवेशन करते हैं वो सबसे बड़ा उदार है। तो इस भक्ति प्रचार करने का अवसर श्रेष्ठ अवसर है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए थे कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए, और इनके मुख्य भक्तों को आदेश दिया प्रचार करना, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमर आज्ञा करो हो प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा, भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, हे नित्यानंद हे हरिदास मेरा आज्ञा सुनो। प्रत्येक द्वार जाके सबको बताओ मेरा आदेश, चैतन्य महाप्रभु का आदेश। वो आदेश क्या है? भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो जो कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं वे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की पूरी कृपा मिलते हैं, और वो कृपा से कृष्ण भक्ति रस मिलता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक शिष्य को प्रभुपाद बताया कि अभी प्रचार करो और बरापा में ब्रजवास करो, तो उसके पहले आगे प्रयास करो भजन करने, तो मन स्थिर नहीं होगा। तो जब तक शक्ति हो तब तक प्रचार करो, और जीवन का अंतिम भाग में ब्रजवास करके भजन करो, फिर मन स्थिर होगा और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मन कृष्णमती होगी। तो ऐसा होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए कि अगर हम प्रयास करेंगे कृष्ण भक्ति में तो चैतन्य महाप्रभु और हमारे सब आचार्यों हमको ऐसी कृपा देंगे जिससे हम प्रेम उपहार मिलेंगे। और भक्ति स्वयं सरस्वती ठाकुर और क्या बोले कि दुष्ट मन तुम्हें कीश वैष्णव प्रतिष्ठा थोड़े निर्जन घर तब हरि नाम केवल कैत। और कीर्तन प्रभावे स्मरण हैबे श्रीकाले निर्जन संभव। कीर्तन प्रचार का प्रभाव से कीर्तन प्रभाव स्मरण होइबे, भगवान का स्मरण आपने आप मन में आएगा, श्रीकाले निर्जन संभव। तो जब तक हम पक्का नहीं है भक्ति में तब तक प्रयास करना चाहिए प्रचार में, और उसके बाद भी हम प्रचार कर सकते। प्रभुपाद बोले कि प्रभुपाद अवश्य ही सिद्ध परमहंस थे, और प्रभुपाद का भजन प्रचार था। भजन का मतलब सेवा, जिस वो सेवा करने जिससे भगवान का स्मरण होता है। तो प्रचार करने में भगवान का स्मरण आता है, क्योंकि प्रचार का मतलब क्या? भगवान के बारे में बोलना, कृष्ण नाम बोलना और दूसरों को बताना कृष्ण नाम करना। तो प्रचार का प्रयास में कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। यज्ञ संकीर्तन यज्ञ से भगवान की आराधना होती है इस कलयुग में। कृष्ण वानं तुषा कृष्णं संगोपंगाश्च पार्षदं यज्ञाय संकीर्तन प्रयाय जन्ति ही सुमेधस। सुमेध जन इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा कृष्ण की आराधना करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्ति रस प्राप्त होती है सही भक्ति मार्ग में, जिसमें भजन होते हैं और प्रचार भी होते हैं, और प्रचार और भजन में अंतर नहीं है। जो भजन करते हैं तो इनका हृदय में अपने आप इच्छा आएगी प्रचार करना, क्योंकि अगर हम सही भजन करते हैं तो हम कृष्ण भक्ति रस प्राप्त होते हैं और अपने आप वो इच्छा आएगी प्रचार करने। हरे कृष्ण।